अनुपमा जी उसको अंदर ले गई। आरवी अंदर ही अंदर खुद को तैयार कर रही थी उनके सवालों के जवाब देने के लिए। उन्होंने अंदर आते ही उससे सवाल किया, आप इस सब के बारे में जानती थी? आरवी ने अनजान बनते हुए कहा, किस बारे में माँ? उन्होंने अब परेशानी भरे लहजे में कहा, वो लोग आपका हाथ मांगने आए हैं, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमने तो इस बारे में अभी तक सोचा ही नहीं था। हाँ, शादी करनी थी हमें आपकी, पर इतनी जल्दी नहीं करनी थी, लेकिन मना भी नहीं कर पा रहे। उनकी बातों से खानदान अच्छा लग रहा है, लड़का भी देखने में अच्छा है, फिर इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आया है, कुछ डिमांड भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका बेटा आपको पसंद करता है, क्या आप उन्हें पहले से जानती हैं? आपको भी वो पसंद है? कॉलेज में देखा है एक दो बार, उससे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मुझे पढ़ाई करनी थी तो और किसी पर ध्यान ही नहीं दिया। आरवी ने एक बात फिर झूठ कह दिया। उसकी बात सुनकर अनुपमा जी सोच में पड़ गईं, फिर कुछ देर बाद बोली, क्या आप शादी के लिए अभी तैयार हैं? मम्मी मुझसे मत पूछिए, आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, आप जब जिससे भी शादी करने को कहेंगी मैं कर लूंगी। आरवी ने उनसे कहा, फिर मन ही मन बोली, माँ प्लीज इस रिश्ते के लिए इनकार कर दीजिए, अगर आपने मना कर दिया तो अपने वादे के अनुसार विहान को कदम पीछे हटाने होंगे, या मुझे थोड़ा वक्त मिल जाएगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। वो मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करने लगी। अनुपमा जी कुछ पल सोचती रहीं, फिर उसको वहीं रुकने का बोलकर बाहर चली गईं। तीनों अब उन्हें ही देख रहे थे। अनुपमा जी ने सहज भाव से कहना शुरू किया, देखिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, हम यूं ही अचानक कोई भी फैसला नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, आपको जितना वक्त लेना हो लीजिए, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। उनके फैसले का सम्मान करते हुए हर्षवर्धन जी उठकर खड़े हो गए। आरवी अब अपने अतीत की यादों से बाहर आई और खामोश हो गई। रश्मि खामोशी से उसकी बात सुन रही थी। अब उसने कहना शुरू किया, उसके बाद आंटी ने सारी बात मम्मी को बताई और पापा से बात करने के बाद उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। तू वक्त चाहती थी जो तुझे नहीं मिला, मैंने तुझसे इतनी बार पूछा कि क्यों कर रही है उससे शादी, इनकार कर दे, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि उसने तुझे धमकी दी थी कि अगर तूने शादी नहीं की तो वो तेरी फोटोज़ लीक कर देगा। तूने उसकी धमकी से डरकर ना सिर्फ शादी के लिए हाँ कहा, मुझसे भी सब छुपाया। इतनी बार मैंने तुझसे पूछा था कि क्यों कर रही है उससे शादी, एक बार तो मुझे सच बताया होता, अकेले इतना सब सहती रही क्यों आरवी? अगर मुझे बता देती तो क्या हो जाता, उसे कैसे पता चलता कि तूने मुझे बताया है, मैं मदद करती तेरी, पर तूने उसकी खोखली धमकी से डरकर मुझसे इतना सब छुपाया, इतना कुछ अकेली झेलती रही, तो क्या करती मैं, नहीं बता सकती थी तुझे कुछ भी, हर पल उसकी नज़र रहती थी मुझ पर, अगर तुझे कुछ बता देती और तू गुस्से में उससे लड़ने पहुंच जाती तो वो पता नहीं तेरे साथ क्या कर देता, मैं अपने वजह से तुझे मुसीबत में कैसे डाल देती, मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई थी, मैंने बहुत बार सोचा था कि तुझसे सब कह दूँ, पर डर गई थी मैं, और अच्छा हुआ जो मैंने तुझे कुछ नहीं बताया, देखा था ना तूने मेरी मेहंदी पर उसके नाम के पहले अक्षर की जगह मेरी हथेली पर एस लिखा था, ये उसे पता चल गया था, मैं कह रही हूँ ना वो हर पल नज़र रखता था मुझ पर, मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकी, मैं किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, वैसे भी जो उसने मेरे साथ किया उसके बाद वो कुछ भी कर सकता था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझसे शादी करने की, वो तो पहले ही सब कर चुका था, अगर वो बात बाहर आ जाती तो कोई मुझसे शादी नहीं करता, उसको भी ज़रूरत नहीं थी इसकी, पर वो मुझसे शादी करने को तैयार था, मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता था, ये उसका एहसान ही तो था मुझ पर। आरवी ने जैसे ही आखिरी बात कही, रश्मि एकदम से गुस्से से चिल्ला उठी, कोई एहसान नहीं था वो, सब उसकी सोची समझी साजिश थी, समझी? उसके चिल्लाने से आसपास के लोग उसे देखने लगे। आरवी ने घबरा कर आसपास देखा, फिर उसको देखकर बोली, धीरे बोलना, सब हमें ही देख रहे हैं। तो देखने दे, उन्हें भी पता चले कि जो लड़की मेरे सामने बैठी है वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, इतनी आसानी से उस कमीने की बातों में फंस गई और चल पड़ी उससे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने। वो तो भला हो मेरा जो मैंने तेरी मेहंदी में चीजू के नाम का पहला अक्षर लिखवा दिया था, और उस हरामखोर को ये बात पता लग गई, इसी बहाने चीजू की एंट्री हो गई तेरी ज़िंदगी में और तेरी शादी उस सुअर से होने से बच गई। जीजू उस कमीने विहान से करोड़ों गुना बेहतर है, अगर किसी लड़की के करीब जाते भी है तो उसकी मर्जी होती है उसमें, उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करते, किसी लड़की के जिस्म को हासिल करने के लिए इतने घटिया खेल नहीं खेलते, अपनी वासना को पूरा करने के लिए शादी के पवित्र रिश्ता का सहारा नहीं लेते। मुझे तो इस बात पर ही शक है कि जो न्यूज़ में दिखाते हैं वो सच है भी या नहीं, जो आदमी अपनी इतनी सुंदर बीवी जो उसके साथ उसके घर और उसी के कमरे में रहती है उसको छूने की कोशिश तक नहीं करता, वो किसी और के करीब क्या खाक जाएगा।
मुझे नहीं पता था आरू कि तू इतनी बड़ी बेवकूफ है, कैसे उसके जाल में इतनी आसानी से फंस गई। उसने कहा कि उसने तेरे साथ वो सब किया और तू मान गई। अरे उस शाम मैं थी तेरे साथ, मैं लाई थी तुझे वापस घर। एक बार तू मुझसे पूछा होता कि सच में उस शाम कुछ हुआ भी था या नहीं। उसने इतनी चालाकी से तुझे अपनी बातों में फंसा लिया, तुझे धमकी देकर मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था अगर तूने मुझे कुछ भी बताया तो उसका खेल मैं उसी वक्त खत्म कर दूंगी। बेवकूफ लड़की, उसकी बातों में आने से पहले एक बार तू मुझसे सच पूछा होता, मैं बताती तुझे कि असल में उस शाम हुआ क्या था, क्यों उसने तुझे शादी के लिए फोर्स किया। कोई एहसान नहीं किया था उसने तुझ पर, वो उस शाम कुछ कर ही नहीं पाया था, इसलिए बाद में तुझे शादी के लिए फोर्स किया, क्योंकि शादी के बाद कानूनन उसको तेरे साथ सब करने को हक मिल जाता, और तब मैं चाहकर भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाती। मेरी समझदार आरू, तू इतनी बेवकूफ कैसे हो गई। पागल लड़की, उस शाम ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा उसने तुझे बताया। हाँ, उसने सब प्लान किया होगा, पर ऐन वक्त पर मैं वहां पहुंच गई थी। आरवी, जो अब तक परेशान सी उसको देखे जा रही थी, अब उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। रश्मि ने एक गहरी सांस छोड़ी और उस दिन को याद करते हुए बताने लगी। टू बी कंटिन्यूड।